ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 4:11:68 का, बात चल रही थी मैं 84 के चक्र में नहीं आता हूं, तुम बच्चे तो प्रैक्टिकल में आते हो, तो इसे समझ जाना चाहिए शिव बाबा में सारा ज्ञान है, क्योंकि वो 84 के चक्र में नहीं आते हैं और तुम जन्म मरण के चक्र में आते हो तो सब भूल जाते हो। तो शिव बाबा में सारा ज्ञान है, तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण सब विश्व दर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा तो सुदर्शन चक्रधारी नहीं बनते हैं, क्योंकि बाबा 84 के चक्र में ही नहीं आते, जो चक्कर में आवे तो सुदर्शन चक्रधारी बने, बाबा तो है ही त्रिकालदर्शी, अंतर्यामी है ना, तुम जानते हो कि हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं संगम युग में, और कोई युग में नहीं बनते हैं, और बाबा निक तो कभी भी नहीं बनते हैं, न चारों युगों में बनते हैं न संगम युग में बनते हैं, उन्हें सुदर्शन चक्रधारी बनने की क्या दरकार, 84 के चक्र का मनन चिंतन मंथन तो तुम बच्चों को करना है। तो सवाल ये उठता है कि बाबा में ये 84 के चक्र का अनुभव कहां से आया, ये सारी नॉलेज आई कहां से, क्योंकि अनुभव तो हम बच्चों को प्राप्त होता है, बाबा को तो अनुभव प्राप्त होता नहीं है, तो बाबा कहां से अनुभव लाता है जो हमको सुनाते हैं, उनको भी तो 84 के चक्र का प्रैक्टिकल में अनुभव हो जाना चाहिए ना। बाप कहते हैं मैं पूरे 84 का चक्र लगाने वाले में प्रवेश करता हूं, तो मुझे ज्ञान सागर कहते हैं, परंतु खुद मैं 84 के चक्र में नहीं आता हूं, तो अब समझा मेरे में ये ज्ञान कहां से आया, टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है, तो ये शिव बाबा कैसे पढ़ा, उनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद ही 84 जन्म में नहीं आते हैं, क्योंकि बाप बीज रूप है, बीज रूप होने के कारण जानते हैं, खुद तो 84 के चक्र में नहीं आते हैं, परंतु तुमको समझाते हैं, तो देखो ये कितना वंडरफुल बात है, ऐसे भी नहीं है कि बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है और ये बातें तो शास्त्रों में भी नहीं लिखी हुई है, शास्त्रों में तो सारे ही गपोड़े हैं, तो कहा जाता है कि ड्रामा अनुसार शिव बाबा में ये नॉलेज नुधी हुई है जो आकर के तुमको सुनाते रहते हैं। तो देखो शिव बाबा वंडरफुल टीचर हुआ, वंडर खाना चाहिए, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दे दिए हैं। ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि कितने नाम दिए हैं। तुम बंदर कहलाते हो, ईश्वर में ये सारी नॉलेज कैसे भरी हुई है, उनमें ये नॉलेज आई कहां से जो हमको समझाते हैं, क्योंकि उनका तो कोई बाप भी नहीं है जिससे जन्म लिया हो और उनका कोई टीचर भी नहीं है जिससे उन्होंने समझा हो। बाप कहते हैं तुम सभी भाई भाई हो, वो एक कैसे तुम्हारा निमित्त बाप बना हुआ है, अभी तुम जान गए हो कि वो बीज रूप है, उसमें तो ऑटोमेटिक सारी नॉलेज भरी हुई है। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं, कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता हूं, तुम लेते हो, तो जरूर प्रश्न उठेगा बाबा आपको मालूम कैसे पड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे अनादि ड्रामा प्लान अनुसार मेरे में पहले से ही ये नॉलेज है जो तुमको पढ़ाता हूं, इसीलिए इनको ऊंचते ऊंचे भगवान कहा जाता है, क्योंकि ये खुद चक्कर में नहीं आते हैं परंतु फिर भी उनमें सारी षष्ठ चक्र के आदि मध्यंत की नॉलेज भरी हुई है। तो तुम बच्चों में को कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा को 84 के चक्र का नॉलेज कहां से मिला, अभी तुमको तो मिला बाप से, तो बाप में ओरिजिनल नॉलेज है ही है, उनको कहा जाता है नॉलेज फुल। कोई से पढ़ते भी नहीं है तो भी उनको ओरिजिनली सब मालूम है, इसलिए नॉलेज फुल कहा जाता है। ये वंडर है, इसलिए उनकी ऊंचते ऊंचे पढ़ाई गाई जाती है, तो बच्चों को वंडर लगता है बाप के ऊपर कि उनको क्यों नॉलेज फुल कहा जाता है। तो ये भी समझने की बात है। और दूसरी फिर क्या बात है, ये चित्र जो तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी, और ये जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी, तो नारायण और ब्रह्मा ये दो आत्माएं हैं ना, एक ब्रह्मा की एक नारायण की। परंतु विचार करेंगे तो ये कोई दो आत्माएं हैं नहीं, क्योंकि ब्रह्मा ही सो तो विष्णु बनते हैं, तो आत्मा तो एक ही है। ये विष्णु का एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का, कि ये ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं, और शंकर का तो बताया कि वो आत्मा ही नहीं शरीर है, और शरीर भी है ही नहीं तो फिर आत्मा भी हो नहीं सकती। देवान तो है ही नहीं, इनको कहा जाता है गुह्य बातें। बाप कहते हैं मैं तुमको गुह्य नॉलेज सुनाता हूं, और तो कोई ये नॉलेज पढ़ा ही नहीं सकता सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं है, वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी की दो आत्माएं नहीं है, तो बताओ, ब्रह्मा और विष्णु की अथवा सरस्वती और लक्ष्मी की दो आत्माएं हैं या एक? आत्मा तो एक ही है, शरीर दो है, क्योंकि ये सरस्वती ही लक्ष्मी बनती है, इसलिए आत्मा तो एक ही गिनी जाएगी। और ये 84 जन्म भी एक ही है आत्मा लेती है। ये बड़ी समझ की बात है, क्योंकि ब्राह्मण सोई देवता बनते हैं, देवता सोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, तो आत्मा एक ही शरीर दूसरा लेती है। तो ये विष्णु का सैंपल दिखाया जाता है, कैसे ब्राह्मण सोई विष्णु देवता बनते हैं। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनका अर्थ कितना अच्छा है। इनको कहा जाता है गुयु गुयु मुख्य पॉइंट्स। इसमें भी पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं असल में परम धाम की रहने वाली है, और वहां से यहां इस दुनिया में आती हैं पार्ट बजाने, खेल करने। ये खेल है बाप, तुमको इस खेल का समाचार बैठ सुनाते हैं, और बाप तो इस खेल को, बाप इससे खेल को ओरिजिनली जानते हैं। उनको इस खेल के बारे में कोई ने सिखाया नहीं है। इस 84 के चक्र को वो तो पहले से ही जानते हैं, जो इस समय तुमको सुनाते हैं, पर तुम तो भूल जाते हो, क्योंकि जन्म-मरण के चक्र में आते हो, और वो तो जन्म-मरण के चक्र में आते ही नहीं तो भूलते भी नहीं। 4/11/68 की वाणी का दूसरा पेज। फिर बताओ, तुम जो नॉलेज बाप से सुनते हो और फिर भूल जाते हो, फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता है? बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, वो तो आकर के कैसे नई नई बातें सुनाई देते हैं, बताते हैं आधा कल्प है भक्ति मार्ग, और ये बातें भी शास्त्रों में नहीं है। ये शास्त्र भी ड्रामानुसार भक्ति मार्ग में बने। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है, तो इनको जरूर मनुष्यतन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ ये षष्ठ चक्र का नॉलेज देते हैं। मनुष्यों ने तो गपोड़े लगाए दिए हैं, कितनी बड़ी आयु लंबी कर दी है, नई दुनिया से फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, और पुरानी दुनिया को कहा जाता है नरक। ऐसे क्यों? क्योंकि स्वस्थिति से बनता है स्वर्ग, और बाप तो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, तो वो तुम बच्चों के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता है। द्वापर युग से मनुष्यों की सृष्टि कही जाती है, मन चलायमान हो जाता है, मननात मनुष्य कहा जाता है, मनन चिंतन मंथन करने वाले को मनुष्य कहते हैं। तो मनुष्य जिसे नर कहा जाता है वो नरक बनाता है। तो देखो, दुनिया तो एक ही है, परंतु बनाने वाले के ऊपर आधार है। राम बाप आकर के स्वर्ग बनाते हैं, और रावण आके नरक बनाए देते हैं। नई दुनिया में सतयुग में रहते हैं देवी देवताएं, वहां अपरम अपार सुख है, वहां सारी सृष्टि ही नई हो जाती है। सतो प्रधान पांच तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। अभी इस दुनिया को देखो, पुरानी दुनिया कहा जाता है, नाम भी है आयरन एज, ओल्ड वर्ल्ड, जैसे पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, नई दुनिया में फिर नई दिल्ली होगी, वो तो पुरानी दुनिया में ही नई दिल्ली कह देते हैं, अब इसको नई दिल्ली कैसे कहेंगे? नई तो सतो प्रधान होनी चाहिए। बाप समझाते हैं कि नई दुनिया में ही नई दिल्ली होती है, उसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे, युगल देवी देवताओं का राज्य होगा, उसको कहा जाएगा सतयुग। उस समय तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे और तुम्हारी गद्दी यमुना के किनारे पर होगी। फिर बाद में रावण राज्य की गद्दी भी यहां ही होती है। तो देखो, राम राज्य की भी गद्दी यही और रावण की भी गद्दी यही। राम राज्य की गद्दी में नई दिल्ली और रावण राज्य की गद्दी में पुरानी दिल्ली। इसे दिल्ली को ही परिस्थान कहा जाता है। फिर जो जैसा राजा होता है वो अपनी गद्दी का ऐसा नाम रख देता है। इस समय तुम सारी पुरानी दुनिया में हो, परंतु नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो और पढ़ाने वाला बाप है, उनके लिए कह देना कि वो ठिक्कर भित्तर में है, कच्छ मच्छ अवतार लेते हैं। बाप कहते हैं कितने मूर्ख बन जाते हैं। मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता, सर्वव्यापी होकर के कैसे पढ़ाऊंगा? एक मुकर्र रथ में आकर पढ़ाता हूं। तो कलयुग में सभी अति मूर्ख पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, सतयुग में तुम पारस बुद्धि रहते हो। नाम ही है पारसनाथ, ऊपर में है पारसनाथ, पत्थरनाथ को पारसनाथ बनाने वाला बताओ कौन है? ऊपर गुरु शिखर, वहां पर जाओ तो वहां शिव का मंदिर है और बनाया भी बहुत ऊंचे ऊंचे है। तो ये मंदिर यादगार है कि शिव बाबा ने ही विश्व में शांति स्थापन की थी। कैसे स्थापन की, उस बात का पूरा यादगार मंदिर है। बाबा ने ऊपर से नीचे आकर तुमको राजयोग सिखाया, दिलवाड़ा में ऊपर में सारा स्वर्ग दिखाया है। तो जरूर बाप यहां आया है और आकर बच्चों को राजयोग सिखाया है। कोठरियों में राजयोगी बैठे हुए हैं। तो देखो, अभी तुम प्रैक्टिकल में स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, जहां अकाल मृत्यु कभी होती नहीं है। वेद के बाप से तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिल जाता है। अभी तुम संगम युग पर हो, जबकि कलयुग पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। अभी जनवरी से कहेंगे बाकी 7 वर्ष। ये कैसे कह दिया? अड़सठ की वाणी है, 68 के बाद 7 वर्ष जोड़े तो 75 पूरा होता है, 76 आता है। 76 में पुरानी दुनिया खत्म कैसे कहें? है ये सूक्ष्म मन बुद्धि से समझने की बात है। पहले संकल्प से सृष्टि रची जाती है, संकल्प तो अति सूक्ष्म होता है। तो 76 में ये संकल्प में बीज पड़ जाता है कि कौन सी पुरानी दुनिया और कौन सी नई दुनिया का संगठन नया तैयार होता है। ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश विघटन शुरू हो जाता है और ब्राह्मणों की नई दुनिया की स्थापना शुरू हो जाती है। तो बाप ने ही इस बात का हिसाब बताया है और तो कोई जानते भी नहीं। बताते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आता हूं, मनुष्य को तो पता ही नहीं है कि वो कौन है। सिर्फ मनुष्यों ने सुना है प्रजापति ब्रह्मा। तुम प्रजा हो ना, ब्रह्मा की प्रजा हो, इसलिए अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। वास्तव में तो तुम शिव बाबा के बच्चे शिववंशी आत्मा हो, क्योंकि निराकारी तो आत्मा ही है। फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हो, और तो तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है। माँ बाप और बच्चे आपस में भाई बहन, उस कलयुगी संबंधों को तुम भूल जाते हो, क्योंकि उन कलयुगी बंधन संबंधों में बंधन बहुत है। नाम संबंध है, बंधन में बांधने वाले हैं। संबंध तो सुख का होना चाहिए ना। अभी तुम सुख के संबंध में जाते हो नई दुनिया में, अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो। ब्राह्मणों की चोटी छोटी होती है, ब्राह्मण तो बड़े होते हैं। सिख को ब्राह्मण नहीं कहेंगे, ये चोटी ब्राह्मणों की निशानी है, परंतु सिख लोगों की भी तो बड़ी चोटी है, फिर उनको बड़ा ब्राह्मण क्यों नहीं कहते? अभी तुम जानते हो कि तुम्हारा ब्राह्मणों का कुल है, वो तो कलयुगी ब्राह्मण है। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं, जो तीर्थ यात्रा कराते हैं। एक होते हैं धामा खाने वाले ब्राह्मण और दूसरे होते हैं कथा सुनाने वाले ब्राह्मण, गीता आदि सुनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण भी गीता सुनाते हो, तुम्हारी है सच्ची गीता और उनों की है झूठी गीता। तो देखो गीता तो वो भी सुनाते हैं और तुम भी सुनाते हो, फर्क देखो कितना भारी है। उन ब्राह्मणों की झूठी गीता है, क्योंकि वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। अब श्री कृष्ण तो भगवान हो नहीं सकता, कृष्ण को तो देवता कहा जाता है, भगवान कैसे कह दिया? देवताएं 16 कला संपूर्ण होते हैं, देवताओं को कलाओं में बांधा जाता है, भगवान तो कलातीत है, भगवान को कलाओं में थोड़ी बांधा जा सकता है। तो देवताओं में दैवी गुण होते हैं, भगवान में दैवी गुण नहीं होते हैं। देवताओं के गुण अलग और भगवान के गुण अलग। देवताओं को तो इन आंखों से देखा जाता है। शिव के मंदिर में देखेंगे मूर्तियां रखी है, परंतु शिव को तो अपना शरीर नहीं है। वो परमात्मा है, परमात्मा अर्थात परमात्मा, ईश्वर प्रभु भगवान आदि से कोई अर्थ नहीं निकलता है। परमात्मा अर्थात सुप्रीम आत्मा, तुम तो सुप्रीम नहीं हो, तो फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में। तुम आत्मा अभी परमात्मा से सीख रहे हो और वो परमात्मा तो कोई से सीखा नहीं है। कृष्ण ने तो बताते हैं शास्त्रों में संदीपन गुरु को गुरु बनाया, उनसे सीखा। तो देखो ये वंडरफुल बात है, जो शिव बाबा किसी से सीखता नहीं है, उस फादर को हम परमात्मा अर्थात फादर कहते हैं, टीचर भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, और कोई आत्मा बाप टीचर गुरु तीनों नहीं बन सकती। ये तो शिव बाबा ही है, एक ही परमात्मा है, उनको कहा जाता है फादर। 4/11/68 की वाणी का तीसरा पेज। तो बच्चों के लिए फादर है, तो फादर है तो टीचर भी चाहिए। वो एक ही फादर है जो टीचर भी है गुरु भी है। हाँ, ये कहेंगे हर एक को पहले फादर चाहिए फिर टीचर चाहिए, पिछाड़ी को सदगति के लिए गुरु चाहिए। आजकल तो ठग लेते हैं, कहते हैं बच्चों को भी गुरु कराना चाहिए तो सदगति हो जाए, नहीं तो गुरु हमेशा पिछाड़ी में किया जाता है, वानप्रस्थ होने के बाद गुरु करते हैं। तो बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर भी बनता हूं, मैं ही तुम्हारा सदगति दाता सदगुरु भी बनता हूं। तो सदगति देने वाला गुरु एक है, बाकी तो अनेक गुरु हैं, सब दुर्गति करने वाले, वो दुर्गति ही देते हैं। सिख लोग कहते भी हैं एक सदगुरु अकाल मूर्त, एक सदगुरु है बाकी सब गुरु हो गए। मैं तो सभी का सदगति दाता हूं, तुम सतयुग में जावेंगे बाकी सभी शांति धाम चले जावेंगे। शांति धाम जिसको परम धाम कहते हैं, सतयुग में आज सनातन देवी देवता धर्म था, वहां एक धर्म के अलावा और कोई धर्म नहीं है, और सभी आत्माएं चली जाती हैं मुक्ति धाम, चाहे कोई भी धर्म की हो। सदगति कहा जाता है सतयुग को, पार्ट बजाते बजाते फिर दुर्गति में आ जाते। तो तुम पूरे 84 जन्म लेते हो, पूरी सदगति और पूरी दुर्गति में तुम आते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा जो उस समय होंगे उनके लिए ऐसे ही कहेंगे। हाँ, 9 लाख तो पहले जन्म में ही आवेंगे, क्योंकि 84 जन्म तो 9 लाख ही लेंगे ना, फिर बाद में दूसरे दूसरे धर्म वाले भी आते रहेंगे, परंतु उनको भी कहेंगे तो देवी देवता ना, उस समय उनके और धर्मों के गुण धर्म संस्कार मर्ज रहते हैं। तो हिसाब किया जाता है जो बाप बैठ समझाते हैं। सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, कच्ची कमजोर आत्माएं हैं, तो पूरे 84 जन्म कैसे लेंगी। और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले कम कम जन्म लेते आते हैं, मैक्सिमम तुम्हारे हैं 84 जन्म। तो ये जो बातें हैं और कोई मनुष्य जानते ही नहीं है, न कोई सन्यासी जानते, न गुरु जानते, न कोई टीचर, ये बातें कोई भी नहीं सुनावेंगे, न कोई शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, न कोई टीचर ने पढ़ाया है। बाप ही बैठ टीचर बन पढ़ाते। गीता में है भगवान वाच, अभी तुम तो समझ गए हो कि आज सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं स्थापन किया, ये तो बाप ही आकर स्थापन करते हैं। कृष्ण तो खुद ही देवता है, वो देवता कैसे बनावेगा? भगवान के लिए गायन है कि नर को नारायण बनाया, नारी को लक्ष्मी बनाया। तो कृष्ण की आत्मा 84 जन्मों के अंत में ये ज्ञान सुनती है, जो फिर वो पहले नंबर में नारायण बन जाता है। तो ये बातें समझने की हैं और रोज पढ़ना चाहिए। तुम स्टूडेंट भगवान के हो, भगवान की नॉलेज तो रोज लेनी चाहिए। है भी भगवान वाच, कहते मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूं, नहीं तो बताओ जन्म जन्मांतर इतने राजाएं हुए, उन राजाओं को राजाई किसने सिखाई, उनको कंट्रोलिंग पावर किसने दी, कोई बतावे? पुरानी दुनिया में तो राजाई देना कोई सिखाता ही नहीं। एक बाप ही आते हैं संगम युग पर, जो राजयोग सिखाए राजा बनाते हैं। तो नई दुनिया माना सतयुग, अभी है कलयुग। बाप आकर के कलयुगी पति से सतयुगी पावन बनाते हैं, इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं, बाबा आकर के हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े ही कहते हैं आकर के हमको ज्ञान सुनाओ। कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनाओ, ऐसे कहते हैं। तो देखो कितना फर्क हो जाता है। कलयुग में होते हैं अपार दुख, सतयुग में होते हैं अपार सुख। वहां बच्चा जन्म लेता है सुखी ही सुख, कलयुग में मर जाता है तो दुख हो जाता है। और सारी आयु कितना दुखी ही दुख है, ये है ही दुख धाम, दुखों की दुनिया है। अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं और उसमें भी तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। तुम सामने वाले से कहा जाता है, तुम सन्मुख बैठ करके बाप से पढ़ाई पढ़ते हो। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, क्योंकि उत्तम से उत्तम पुरुष नारी तुम अभी बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण उत्तम से उत्तम है ना, तो तुम आते ही हो ये उत्तम बनने के लिए। स्टूडेंट का टीचर से योग होता है, क्योंकि समझते हैं इन द्वारा हम पढ़ करके फलाना बनेंगे। या तुम योग लगाते हो परमपिता परमात्मा शिव से, जो बैठ तुमको देवता बनाते हैं। कहते हैं मुझे अपने बाप शिव को याद करो, जिस बाप के तुम शालिग्राम बच्चे हो, तो अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि वो ही बाप नॉलेज फुल है। भक्ति मार्ग में तो झूठी गीता सुनते सुनते तमो प्रधान बन गए, क्योंकि गीता में निराकार की जगह साकार मनुष्य का बाप, साकार मनुष्य का नाम डाल दिया। बाप फिर आकर के सच्ची गीता सुनाते हैं, परंतु बाप खुद तो पढ़ा हुआ नहीं है। वो कहते हैं मैं किसी का बच्चा नहीं हूं, न किसी से पढ़ाई पढ़ता हूं, और मेरा कोई गुरु भी नहीं है। हाँ, मैं तुम बच्चों का बाप टीचर गुरु हूं, तब उनको परमात्मा कहा जाता है। इस सारी सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हैं, जब तक वह न सुनावे तो तुम आदि मध्यंत को समझ ही नहीं सकते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। तो ये बातें तुमको ये ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, कहेंगे इनमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं, तो ये नई बात हो गई। और ये नई बातें होती हैं संगम पर, फिर पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। कहेंगे किन किन की दबी रही धूल में, किन की राजा खाए, किन की ले गए चोटा, किन की आग जलाए। तुम तो धनी बच्चे हो, तो धनी बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने के लिए ये पाठशाला, म्यूजियम आदि खोलो, जहां बहुत आकर के सुख का वर्षा पावेंगे। अभी तो दुख का वर्षा है, रावण का वर्षा। रावण राज्य है ना, राम राज्य में सुख था, रावण राज्य में दुख है, क्योंकि सभी विकारी बन गए हैं। वो तो है ही निर्विकारी दुनिया, ये तो जानते हो कि बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि के भी होते हैं, परंतु वहां योग बल से पैदाइश होती है। बाप तुमको योग बल सिखाते हैं, योग बल से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो, बाहुबल से हिस्ट्री में कोई भी विश्व का मालिक नहीं बन सका। ये ला नहीं कहता है कि बाहुबल से कोई हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी विश्व का मालिक बन जाए, सारे विश्व पर राज्य कर ही नहीं सकते। तुम बच्चे बाप की याद से, याद के बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो, तो समझो कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाप कहते हैं अभी पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, पवित्र बनने से ही तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते।